अध्याय तीन, शिखर व्यक्तित्व का नया आयाम। राम स्वरूप चतुर्वेदी। अज्ञेय के काव्य में मानवीय व्यक्तित्व को या किसी समूची सृष्टि को ही एक नए अपेक्षाकृत गैर रोमांटिक ढंग से देखने की शुरुआत मिलती है, जिसमें आग्रह परंपरागत राग पर उतना नहीं जितना कि यथार्थ को सही ढंग से समझने पर है। उपन्यासों में मानवीय व्यक्तित्व की पूर्णता की ओर क्रमिक यात्रा लेखक की चिंतना का केंद्रीय तत्व है, और इस प्रकार कविता तथा उपन्यास मिलकर व्यक्तित्व का और इसलिए अंततः यथार्थ का भी एक समग्र तर चित्र उपस्थित करते हैं। दो जिल्दों में प्रकाशित शिखर अज्ञेय का पहला उपन्यास है। प्रस्तावित तीसरा भाग छपा नहीं। यूं दूसरा उपन्यास नदी के द्वीप वयस्क शेखर की प्रणय कथा ही लगती है, पर कोई स्थानों पर जहां शेखर और नदी के द्वीप का रचनात्मक संबंध जुड़ता है, वहां कई अन्य स्थानों पर नहीं भी जुड़ता। अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि नदी के द्वीप शेखर की एक विशिष्ट संवेदना का प्रसार है, किंतु शेखर के तीसरे भाग के रूप में उसे नहीं माना जा सकता। शिखर प्रथम खंड 1941, द्वितीय खंड 1944 और नदी के द्वीप 1951, दोनों में पीड़ा और प्रेम के माध्यम से उनसे व्युत्पन्न सृजनात्मक ऊर्जा के बीच से, और पीड़ा तथा प्रेम ये दोनों ही मूलतः एक ही तत्व हैं, व्यक्तित्व की परिपूर्णता स्वायत्तता करने की चेष्टा हुई है। शिखर चतुर्मुखी विद्रोह का आख्यान है, पर नदी के द्वीप सबसे पहले एक प्रणय कथा है, अत्यंत सुकुमार संवेदनशील विशिष्ट पर उदार। पीड़ा और प्रेम व्यक्तित्व को कैसे उन्मुक्त और स्वाधीन बनाते हैं या बनाता है, यही उपन्यासकार के जिज्ञासा का मुख्य क्षेत्र है, विशेषतः दूसरी कथावृत्ति में, क्योंकि पहली रचना में तो अन्वित केंद्रीय पात्र की उपस्थिति से ही अधिक संभव होती है, संवेदनात्मक स्तर पर उतनी नहीं। व्यक्तित्व की इस परिपूर्णता के यत्न को खंडित करने वाला सबसे बड़ा तत्व मृत्यु या उसका त्रास माना गया है। आधुनिक काल में पश्चिम के कई दर्शनों ने, विशेषतः अस्तित्ववाद ने, माना है कि मृत्यु समूचे जीवन को अनर्थक बनाती है। इसके विपरीत अपने तीसरे और नवीनतम उपन्यास अपने अपने अजनबी 1961 में अज्ञेय की उपपत्ति है कि नश्वरता का भाव ये जीवन को सृजनात्मक रसमय और अर्थवान बनाता है, और इस तरह मृत्यु व्यक्तित्व की परिपूर्णता में बाधक नहीं वरन उसे निष्पन्न करने में सहायक है। शिखर और नदी के द्वीप में व्यक्ति और समाज के बीच दोनों को जोड़ने वाला व्यक्तित्व का संपृक्त रूप विकसित हुआ है, पर यह आरंभ में ही स्वीकार करना होगा कि बड़े संवेदनशील स्तरों पर व्यक्तित्व की परिपूर्णता का यह यत्न लेखक की परिकल्पना को बराबर समाज परक बनाए रखने पर भी उसे व्यापक जीवन से जोड़ नहीं पाता, और तब अनुभव होता है कि अज्ञेय की पहले दोनों उपन्यासों में असाधारण रूप से कुशल साधन उतनी ही बड़ी है और व्यापक दृष्टि के लिए प्रयुक्त होते नहीं दिखते। कृतिकार के जीवन की यह एक विडंबना ही है। अपने अपने अजनबी में अवश्य लेखक उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां व्यक्ति समाज और व्यक्तित्व के भेद नहीं रह जाते, जहां जीवन अपनी समग्रता में है, और यह स्मरणीय है कि जीवन का यह समग्रतर बोध लेखक के उस उपन्यास में अंकित हुआ है जो आकार के दृष्टि से सबसे छोटा है। तो एक मूल वस्तु का क्रमिक विकास अज्ञेय के उपन्यासों में मिलता है, और वह स्पष्ट है कि दृष्टि का पकना इन उपन्यासों में उत्तरोत्तर उपन्यासत्व को विकसित करता चलता है, क्योंकि कथा के माध्यम से और फिर कथा से ऊपर उठकर भी रचना दृष्टि का अधिकाधिक संभव और दक्ष संगठन उपन्यास की मूल विशेषता है। इस दृष्टि से लेखक बराबर कथा से उपन्यास की ओर उन्मुख होता चलता है। अज्ञेय ने जब शिखर लिखा, उस समय हिंदी उपन्यास घटना और कथानक बहुलता से ऊपर उठकर चित्रांकन को महत्व दे रहा था। चारित्रिक व्यंजना की दृष्टि से प्रेमचंद निश्चय ही हिंदी के शीर्षस्थ उपन्यासकार रहेंगे, पर चरित्र के आचरण और व्यवहार में गहरे स्तर पर संगति की खोज अभी आरंभ न हुई थी। जैनेन्द्र के साथ अज्ञेय इस दिशा के आरंभिक प्रयोगकर्ताओं में है, जिन्होंने चरित्र के आचरण को समझने के लिए समग्र व्यक्तित्व और उसकी संवेदनाओं को समझने का उपक्रम किया। त्यागपत्र और शिखर इस अभियान की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जो समाज के यथार्थ की स्वीकृति और मान्य औपन्यासिक परंपरा से हटकर कुछ कुछ कविता के जैसे शिष्ट संगठन की ओर झुकी दिखाई देती है। शिखर का पहला भाग लेखक की पहली महत्वपूर्ण कृति के रूप में स्वीकृत और चर्चित हुआ। सच तो यह है कि अज्ञेय के कवि को इस कथाकृति के प्रति दोहरे स्तर पर आभारी होना चाहिए। साहित्य प्रतिष्ठा के स्तर पर बाहरी रूप में और रचना के अंतरंग क्षेत्र में व्यापक काव्य भाषा की उपलब्धि के स्तर पर इस दूसरी स्थिति का अपेक्षा विस्तृत विश्लेषण लेखक की काव्य भाषा के प्रसंग में किया जा चुका है। यहाँ इतना कहना पर्याप्त होगा कि शिखर के माध्यम से लेखक ने न केवल हिंदी उपन्यास के आभ्यंतर को रूपांतरित किया वरन स्वयं अपनी रंगहीन और सपाट कविता भाषा का गहरा और रचनात्मक संघात पाया। अज्ञेय की काव्य भाषा का पहला महत्वपूर्ण साक्ष्य शिखर ही है जो स्वयं गद्य भाषा की उपलब्धि है पर जिसने लेखक की अब तक पाया भटकती और लड़खड़ाती कविता भाषा को भी एक नई रचनात्मक दिशा की ओर उन्मुख किया। शिखर मूलतः विद्रोह का आख्यान है पर इतना कहने भर से बात स्पष्ट नहीं होती। असली बात इस विद्रोह की प्रकृति को समझना है। क्या यह विद्रोह उस रोमांटिक प्रवृत्ति से अलग है जिसका रूप छायावादी काव्य में दिखाई देता है? रोमांटिक भावधारा से विद्रोह की वृत्ति प्रायः सर्वत्र जुड़ी मिलती है। अज्ञेय के कृतित्व में विशिष्ट रचनाकाल के पूर्वार्ध में रोमांटिक वृत्तियों की ही अधिकतर अभिव्यक्ति हुई है पर लेखक की तुष्टि इतने से नहीं होती और वह आगे का उपक्रम करता है। इस दृष्टि से शिखर का विद्रोह यूं सामान्यतः रोमांटिक प्रकार का ही है पर उसमें राग के अतिरिक्त से अलग होने की चेष्टा भी दिखाई देती है। शिखर के आरंभ में लेखक मानकर चलता है इस जीवन में भी कुछ है, एक उत्ताप, एक ऊर्ध्वगामी दीप्ति जो यदि विद्रोह की शक्ति नहीं तो विद्रोह शक्ति की उपासना सामर्थ्य अवश्य है। विद्रोह के प्रति यह घना आशंसा का भाव शेखर के आगामी क्रांतिकारी जीवन के अनुकूल है पर शेखर के इस आरंभिक अंश में ही जहाँ लेखक अपनी मुख्य उपपत्तियां प्रस्तावित कर रहा है विद्रोह के परंपरागत रागाविष्ट रूप से भिन्न एक नई और अपेक्षा गैर रोमांटिक परिकल्पना की ओर भी वह संकेत करता है। विद्रोह और क्रांति के मनोभावों का विश्लेषण करते हुए उपन्यासकार ने अपनी कामना शक्ति व्यक्त की है। यूनाइटेड कामा, मैं इस दिन की कल्पना करता हूँ कि जिस दिन हमारे देश के, हमारे संसार के क्रांतिकारी कहने वाले व्यक्तियों में ऐसी प्रखर किंतु शीतल बौद्धिक घृणा जागेगी क्योंकि विद्रोह अनंत है, नित्य है, क्योंकि उसके उपकरणों में प्रेम की बात सबसे बड़ा और सबसे अमोघ अवसर है यही बौद्धिक घृणा। यूनाइटेड कामा, यह प्रखर किंतु शीतल बौद्धिक घृणा शिखर की प्रस्तावना का केंद्रीय तत्व है। यह दूसरी बात है कि लेखक इस उपपत्ति को रचना में कहाँ तक उपलब्ध करा पाया है, शायद बहुत दूर तक नहीं। उपन्यास के समूचे संगठन में प्रेम और विद्रोह दोनों का अपेक्षा रोमांटिक पक्ष की अधिक व्यक्त हुआ है और इसका श्रेय अज्ञेय को होगा कि हिंदी साहित्य के रोमांटिक दौर में अपना कार्य प्रारंभ करके वे विद्रोह के प्रसंग में प्रखर और शीतल दोनों विशेषणों की एक साथ चर्चा कर पाते हैं और फिर आगे चलकर अपने रचनाकाल के उत्तरार्ध में विद्रोह के ठंडे और गैर रोमांटिक रूप को दूर तक पहचान पाते हैं। लेखक की आधुनिक विचार और रचना पद्धति का यह आरंभिक संकेत है। ठंडे विद्रोह का रूप प्रस्तावित करते हुए शेखर शशिश कहता है, इनरट कामा, मैं जो कुछ लिखता हूँ बहुत उबल कर लिखता हूँ पर मुझे लगता है कि वह अच्छा नहीं है, बल्कि कभी यह भी लगता है कि उद्देश्य भी उसमें नहीं है क्योंकि वह उबाल ही उबाल है और उद्देश्य के लिए तो नक्शा बनाकर संयम से चलना चाहिए। उबाल पर संयम को मूल्य देना यह स्पष्ट है रोमांटिक से हटने की कोशिश है और स्मरणीय है कि संयम को मूल्य देने वाला शेखर क्रांति या विद्रोह को मौलिक प्रतिमान मानकर चलता है। बाबा मदन सिंह के साक्ष्य पर वह मानता है कि तोड़ना ही धर्म है, बनता तो अपने आप है। शिखर के मन में सर्वतोन्मुखी क्रांति की परिकल्पना है, खासतौर से साहित्य के संदर्भ में। राजनीतिक नेता क्रांति के लिए अलग अलग पक्ष चुनते हैं या उनकी सीमा है। एक दिशा में बढ़ने वाली क्रांति से प्रगति संभव नहीं, क्योंकि यह अन्य दिशाओं को आच्छादित कर लेती है। पर साहित्य में क्रांति का एक संगठन पक्ष है तो एक महान व्यक्तितर पक्ष भी है, और इसीलिए शेखर अपने साहित्य में बहुमुखी क्रांति का रूप प्रस्तावित करना चाहता है जो अन्य क्षेत्रों में संभव नहीं। इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि शेखर क्रांति को एक महानतर व्यक्ति पक्ष मानते हुए भी उसे आंदोलित करने की शक्ति बाहर ही खोजना चाहता है। उसने अनुभव किया कि उसकी प्राण शक्ति अंतर्मुखी हो रही है और क्रमशः उसी को भस्म कर जाएगी। अगर किसी गहरे आंदोलन के लिए बहिर्मुखी न कर दिया, और यह दोनों ही चाहिए, क्योंकि बहिर्मुखी शक्ति की क्रांति कर सकती है, अंतर्मुखी नहीं। अंतर्मुख होकर वह एक विशेष प्रकार का कवि चाहे हो जाए, पर जो वह होना चाहता है, जो वह करना चाहता है, वह सब धूल हो जाएगा। यह उपपत्ति शेखर के उस संकल्प के अनुकूल है जिसके अनुसार वह किसी से मोह नहीं करेगा, पर इस बहिर्मुखी शक्ति का महत्व या कि मोह का निरसन उसके जीवन में कहाँ तक व्यक्त हुआ है, मूल प्रश्न तो यह है। और यहाँ हम विडम्बना पाते हैं कि सामाजिक क्रांतिकारी होते हुए भी शेखर का व्यक्तित्व बृहत्तर जीवन का अंग नहीं बन पाता। शशि की मृत्यु के बाद शेखर को एक बार फिर से सक्रिय क्रांति का आह्वान मिलता है। पत्रवाहक युवक कहता है, पर आप चलिए, काम में आपको सांत्वना मिलेगी और काम बड़ी तपस्या का है। यदि शशि बहन होती तो वे जरूर यही कहती, और मेरा विश्वास है कि अब भी इससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। शेखर के मन में शशि के प्रति मोह उबलता है। उसने चाहा कि एक थप्पड़ मार दे उस युवक के मुंह पर जो इतनी आसानी से बात कर सकता है। यहाँ संयम इतना भर है कि वह थप्पड़ मार नहीं देता, पर गहरा मानसिक संयम उसके चरित्र में विकसित नहीं होता। यूँ शेखर के आंतरिक और बाह्य जीवन में संगति नहीं उपजती। ठंडे विद्रोह की प्रतिज्ञा मोह और राग के आगे टूट जाती है। शेखर के चरित्र में यह संगति की कमी पूरे उपन्यास की कमजोरी बन जाती है। शेखर में रचना दृष्टि के आच्छादित हो जाने का यह एक मूल कारण है। शिखर के लेखक की जिज्ञासा और चिंतन का प्रधान क्षेत्र मानवीय व्यक्तित्व है, यह संकेत किया जा चुका है। स्वयं शेखर के शब्दों में इस व्यक्तित्व की संपूर्ति आपूर्ति की कहानी कहना रचना का मुख्य उद्देश्य है, और संपूर्ति आपूर्ति भी समग्रतः नहीं है, उन दोनों के बीच की कोई स्थिति है। रचना में इस केंद्रीय व्यक्तित्व के रूप की समस्या कथाकार के सामने है। प्रवेश के लगभग अंत में कथा का उत्तम पुरुष कष्ट करता है, अपने व्यक्तित्व को मैं समझू या वह या तू, और अंततः तटस्थता के निर्वाह की दृष्टि से वह यही निर्णय लेता है कि जिसकी कहानी में निहित संदेश को मैं प्रकट करूंगा वह वही है, और यूं रचना के प्रस्तावना में व्यक्तित्व की खोज के वे महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं जिनका उल्लेख कथा साहित्य के संदर्भ में अज्ञेय ने अपने बहुचर्चित निबंध समसामयिक हिंदी साहित्य में किया है। आत्मकथात्मक शैली में लिखे जाने के कारण शिखर में यह व्यक्तित्व की खोज अधिक कुशल और प्रामाणिक ढंग से संभव हो सकी। व्यक्तित्व को समझने का अर्थ है अपने को समझना, अपनी सर्जन प्रक्रिया को समझना। इसलिए शिखर की चिंता बराबर यह है कि वह व्यक्ति बने, टाइप नहीं, जबकि शिक्षा देने वाले संसार की कोशिश है कि उसे मूल रचना न रहने देकर एक प्रतिलिपि मात्र बना दिया जाए। शिखर का पक्ष है व्यक्तित्व का, रचना का और मौलिकता का, क्योंकि मानवीय सृजनात्मकता की संभावना वही है, और मौलिक होकर ही सत्य का संस्पर्श संभव है। दूसरे की सोची हुई बातों से कभी भी कोई आश्वस्त नहीं हो सकता, वे अपनी ही अंतरात्मा से निकले तभी सच होती है। व्यक्तित्व को, रचना को अधिकाधिक खरा और प्रामाणिक बनाया जा सके, अज्ञेय के समूचे व्यक्तित्व की यह केंद्रीय भावधारा उत्तरोत्तर निखरती और पुष्ट होती चलती है। वे जानते हैं कि सृजनात्मक होकर ही मनुष्य सबसे अधिक मनुष्य है। व्यक्तित्व को खरा और प्रामाणिक बनाने की प्रक्रिया में वेदना का तत्व लेखक की दृष्टि से पहले आता है। शेखर की भूमिका का प्रथम वाक्य है, वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है। जो यात्रा में है वह दृष्टा हो सकता है। इन्वर्टेड कॉमा, स्वयं लेखक के साक्ष्य के अनुसार, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, शेखर घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। इन्वर्टेड कॉमा, तो शेखर जिसकी सृष्टि वेदना में हुई है, वेदना के निर्णायक रूप को बड़े अंतरंग भाव से प्रस्तुत करता है। शशि के ये शब्द शेखर के लिए मानो आलोक स्तंभ है। सिंगल इनपुट कामा, दुख उसी की आत्मा को शुद्ध करता है जो उसे दूर करने की कोशिश करता है। शुद्धि दूसरे के साथ दुखी होने में नहीं, दूसरे के स्थान पर दुखी होने में है। सिंगल इनपुट कामा, उपन्यास के दूसरे भाग में शेखर के काराप्रवास के दिनों का अंकन इस दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। एक तरह से यह अंश समूची रचना का श्रेष्ठतम अंश है और समकालीन कथा साहित्य में भी जोड़ है। राम जी, बाबा मदन सिंह और मोहसिन अपने अपने ढंग के खरे व्यक्तित्व हैं। शेखर उनसे बहुत कुछ सीखता है, पाता है। उनके व्यक्तित्व में जो दीप्ति है वह वेदना में से उपजी है। शशि का चरित्र भी बहुत कुछ ऐसा ही है, पर आत्मपीड़न को महत्व देने वाली शरद चंद्र की नारी दृष्टि से वह बहुत अलग नहीं। दूसरी ओर कारा जीवन के शेखर के मित्रों ने, विशेषतः बाबा मदन सिंह ने, जीवन का एक क्षण अर्जित किया है। युवा शेखर के सामने भी मूल समस्या यही है। शेखर जीवन के द्वारा जिया नहीं जाता, वह जीवन को जीना चाहता है और इस जीने की प्रक्रिया के मुख्य उपकरण है विद्रोह, सर्वतोमुखी क्रांति और वेदना। यह ठीक है कि कारावास का जीवन सामान्य जीवन नहीं है। जैसा बाबा मदन सिंह अपनी प्रखर व्यवहारिक पर तलवर्ती दृष्टि से कहते हैं, सिंगल कमा, सूत्र बोलने का रोग आपको भी लगा क्या? जेल में बातचीत ही अस्वाभाविक हो जाती है। पर जीवन को जीने, उसमें अर्थ या संगति पाने की चुनौती जेल की दीवारों के भीतर जितनी है उतनी बाहर शायद नहीं, क्योंकि एक स्तर पर जहाँ जेल में जीवन स्थगित हो जाता है, वहीं दूसरे और गहरे स्तर पर जीवन की चोट उतनी ही गहरी हो जाती है। बाबा मदन सिंह इस चोट को अंत तक झेलते हैं और अर्थ या संगति की खोज से उपराम नहीं होते। उनका अंतिम सूत्र है सिंगल इनपुट कॉमा, अभिमान से भी बड़ा दर्द होता है पर दर्द से बड़ा एक विश्वास है। इनपुट कॉमा, शेखर के जीवन में अनेक अवसर आते हैं जब जीवन में कुछ अर्थ पा लेने की ललकार से उन्मत्त साण की तरह अव्यवस्थित बना देती है। ऐसे स्थलों पर लेखक के वर्णन अचूक बन पड़े हैं और भाषा तथा मनोस्थिति का आवेदन अपने चरम रूप पर पहुंच गया है। जेल में जीवन के घनीभूत रूप का बड़ा कलात्मक उपयोग अज्ञेय ने शेखर में किया है। विवरण से ऊपर उठकर संवेदना के स्तर पर जहां लेखक के अनुभव और विचार संपृक्त और सृजनात्मक रूप में कला के धरातल पर संगठित हुए हैं, जीवन में अर्थ और संगति उपलब्ध कराने की खोज शेखर काफी कच्ची वय से आरंभ करता है। समझदारी आने पर इस खोज में उसे दो व्यक्तियों का सहयोग मिलता है, शशि का और बाबा मदन सिंह। बाबा मदन सिंह के अंतिम सूत्र का उल्लेख ऊपर किया गया है, दर्द से बड़ा एक विश्वास होता है, पर शशि उसका संशोधन करती है। शरदचंद्र की राजलक्ष्मी, श्रीकांत और अचला यानी गृहदा और जैनेन्द्र की मृणाल यानी त्यागपत्र की परंपरा में दर्द से बड़ी एक लाचारी होती है। जितना बड़ा दर्द उतनी ही बड़ी, नहीं तो दर्द के सामने जीवन हमेशा हार जाए। विश्वास और लाचारी का अंतर बाबा मदन सिंह और शशि के चरित्रों के बीच का अंतर है, पर बाबा से प्रभावित होने पर भी लेखक का पक्ष अंततः शशि का ही रहता है। यही मुख्य कारण है कि जिससे ठंडे विद्रोह की प्रकृति को समझने पर भी शेखर का संगठन रोमांटिक भावधारा को ही प्रश्रय देता है। शेखर ने जाना कि बहिर्मुखी शक्ति एक क्रांति कर सकती है, अंतर्मुखी नहीं, और उसकी मूल वृत्ति रहती अंतर्मुखी ही है। पीड़ा और प्रेम के माध्यम से जो मानवीय चरित्र के विशिष्ट अंग और उनसे व्युत्पन्न सृजनात्मक ऊर्जा के बीच में व्यक्तित्व की परिपूर्णता स्वायत्त करने की चेष्टा अज्ञेय के उपन्यासों की मूल वस्तु है, यह पहले कहा जा चुका है। शेखर से लेकर अपने अपने अजनबी तक जीवन में अर्धसंगति की बुनियादी खोज का यह यत्न रचनाकार के व्यक्तित्व को समृद्ध करता है। शेखर में जेल का अस्वाभाविक जीवन थोड़े समय तक रहता है। यूं असाधारण परिस्थितियों के दबाव में, खास तौर से मृत्यु के इर्द गिर्द, लेखक ने जीवन का मर्म समझने की कोशिश की है। यहाँ स्पष्ट यह महत्व प्रयत्न की सफलता या असफलता का नहीं है, प्रयत्न किस हद तक सही दिशा में है मुख्य बात यही है। शिखर के व्यक्तित्व में पीड़ा और प्रेम का मुख्य सर्जक चरित्र है शशि। सबसे पहले तुम शशि, इसीलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या कि तुम सबसे ताजे स्मृति हो, इसलिए कि मेरा होना अनिवार्य रूप से तुम्हारे होने को लेकर है। ठीक वैसे ही जैसे तलवार में धार का होना शान की पूर्व कल्पना करता है। शेखर और शशि की इस अत्यंत निकट भाव को लेकर हिंदी साहित्य में बड़ा क्षोभ रहा है, अब भी है, यह कहना शायद अनुदारता का परिचय देना होगा। शेखर जब प्रकाशित हुआ था उस समय से लेकर स्थिति में काफी अंतर हुआ है। एक मुख्य अंतर तो यही है कि अब तक शेखर को प्रकाशित हुए 20 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। 20 वर्ष से शेखर हिंदी साहित्य का अंग है, पर यह सही है कि शेखर के छपने पर अनेकानेक पाठकों और आलोचकों ने अपना नैतिक क्षोभ इसलिए प्रकट किया था कि शेखर और शशि जैसा घनिष्ठ भाव उनकी दृष्टि में, जिसे अब तब भारतीय दृष्टि कहना ही आसान था, केवल पति पत्नी के बीच ही उचित है, क्योंकि लेखक शशि और शेखर को भाई बहन के रूप में चित्रित करता है, भले ही दूर के रिश्ते से। पुरुष और नारी के बीच गहरी मानवीय संवेदना और उसकी अनेक अर्थ छायाओं को समाज केवल एक बिल्ला देना चाहता है दाम्पत्य का। स्पष्ट ही समाज के निवाह में बिल्ला मुख्य है, मानवीय परिस्थितियां गौण हैं। अज्ञेय ने इस अतिचार का विरोध किया, उनकी दृष्टि में शेखर और शशि का संबंध मुख्य है। नामकरण की स्थिति बाद में हो सकती है, स्वीकृत नामकरणों के अनुसार मानवीय संबंधों की परिकल्पना यथार्थ को उलट देना है। अज्ञेय का मौलिक क्रांतिकारी व्यक्तित्व विचार का द्योतक था, जबकि विद्रोही नई पीढ़ी ने उसे सहज और आत्मीय भाव से माना। उपन्यासकार शशि और शेखर के संबंध को लेकर एक भावमय स्थिति भर मानकर नहीं छोड़ देता, अपनी रचना के इस केंद्रीय संवेदन सूत्र को वह तर्कपूर्ण ढंग से समझना समझाना चाहता है। जेल में जहाँ से मानव शेखर वयस्कता का अनुभव आरंभ करता है, शशि के मिलने आने पर वह सारी स्थिति पर गहरे ढंग से विचार करता है। जाते समय शशि को आदिम बहन मानकर शेखर प्रणाम करता है। इस आदिम बहन वर्णन में ही लेखक एक अति नैतिक, अनैतिक नहीं, मना स्थिति का बड़ा सूक्ष्म और व्यंजक संदेह देता है। जहाँ पुरुष और नारी का विश्वासप्रद संबंध सारे नियमों विधानों के ऊपर है, अपनी सगी बहन सरस्वती और शशि की स्थितियों की तुलना करते हुए शेखर शशि के प्रति अपने मूल भाव को एक आधार देने का यत्न करता है। सरस्वती तो थी ही, शेखर ने होश संभालने के समय से ही उसको आसपास देखा था, पर शशि मानो उसकी खोज का परिणाम थी। असंख्य प्राणियों के उस उलझे संसार में से उसने एक को खोज निकाला था अपने स्नेह के दायरे में बैठाने के लिए। वह वाहन यानी अपनी होकर भी नई, कुछ अपरिचित, कुछ हयासिद्ध सी थी, जैसे उसे अपनाने के लिए हमेशा सतर्क रहना पड़ता था। पर इतने विश्लेषण के बाद भी शेखर सारी स्थिति के प्रति बहुत निश्चित नहीं हो पाता। यहाँ उपन्यासकार ने बड़े कौशल के साथ मानवीय संबंधों की अद्वितीयता को उनकी सामान्यतः स्वीकृत जड़ता और स्थिरता के ऊपर प्रतिष्ठित किया है। सारा विश्लेषण प्रस्तुत करके ही उसके प्रति शंकालु रहना व्यक्तित्व की गति और संभावना का परिचायक है। इतने मालिक अद्वितीय और गतिमान संबंध की परिकल्पना जो शेखर के शब्दों में उसकी अपनी खोज का परिणाम थी, उतनी ही गहरी पीड़ा का स्रोत हो यह स्वाभाविक ही है। शेखर और शशि का संबंध अधिकतर भावनात्मक स्तर पर अंशतः बौद्धिक स्तर पर भी प्रखर मानवीय पीड़ा को जन्म देता है, जो शशि की मृत्यु तक अर्थात दूसरे खंड के अंत तक उत्तरोत्तर निखरती जाती है। अपने जीवन के अंतिम दौर में शशि शेखर को समझाती है, मैं वहाँ भी जी लूँगी, जी सकूँगी, क्योंकि तुम्हें बढ़ाती हो रहूँगी, तुमसे दूर हटती हूँ शेखर, क्योंकि पंगु हो गई हूँ, इसलिए नहीं कि प्यार का अर्थ नहीं जानती। कोई स्त्री प्यार नहीं जानती तो एक साथ ही बहन स्त्री और माँ का प्यार देना नहीं जानती। प्यार और उसे देने वाली नारी की इतनी व्यापक और विराट परिकल्पना किसी एक संबंध में कैसे अट सकती है। स्वयं लेखक द्वारा आरंभ में प्रस्तावित संबोधन आदिम बहन मानो उसके लिए छोटा पड़ जाता है, आदिम नारी से भी पूरा नहीं पड़ेगा, और तब सारे विशेषणों और भेदों का सहारा छोड़कर शब्द को सीधे ही लेना होगा, नारी तुम केवल नारी हो। शिखर को बनाने वाले अन्य व्यक्तियों में उसकी माँ का प्रमुख हाथ है, पर शशि से जितनी आत्मीयता और स्नेह उसे मिला माँ से उतना ही अविश्वास। माँ का विश्वास न मिलना उसे सबसे पहले विद्रोह के लिए प्रेरित करता है। शिखर का आदि विद्रोह रूप माँ को लेकर है, अपने इस भाव का विश्लेषण वह मनोवैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर करना चाहता है। वह सोचता है कि इनोटर कमा असाधारण व्यक्तित्व पिता से प्रभावित होते हैं। यूँ कहना चाहिए, माँ की ओर आकर्षित पुत्र और पिता की ओर आकर्षित कन्या साधारणता की ओर सामान्यता की ओर जाते हैं, और पिता की ओर आकृष्ट पुत्र माता की ओर आकृष्ट कन्या असाधारण होते हैं। शेखर साधारण नहीं था, वह अपने पिता का उपासक था। कहाँ पर यूँ माँ के प्रति तीखे और प्रतिकूल भावों ने उसके व्यक्तित्व को गति दी है। व्यवहार बुद्धि वाली माँ से सहज विश्वास न पाने पर शेखर का मन घृणा और वासना से भर जाता है। इससे उसके विद्रोह भाव को और बल मिलता है। हीन समझे जाने वाले ये मनोविकार भी उसके व्यक्तित्व को शक्ति संपन्न बनाते हैं। कथाकार कहता है, प्रेम की और त्याग की विरुद्धावली बहुतों ने गाई है, घृणा और वासना की प्रशंसा कभी किसी ने नहीं की, लेकिन शेखर के जीवन को इन्हीं दो शक्तियों ने संभव बनाया। शेखर और शशि के संबंधों को यदि एक स्तर पर आपत्तिजनक माना जाता रहा है, तो शेखर ये अपनी माँ के प्रति घृणा और विद्रोह के भाव को एक दूसरे स्तर पर, ये दोनों ही प्रकार के मानवीय संबंध भद्र समाज में तीखी आलोचना के विषय बने हैं। यहाँ स्पष्ट है आदर्शीकरण पर बल इतना अधिक है कि यथार्थ को बार बार झुठलाया जाता है, उसे आच्छादित और आवृत्त कर लेना है श्रेयस्कर माना जाता है। यथार्थ से दूर हटी यह परंपरागत चिंतन पद्धति किसी भी मौलिक और सर्जनात्मक चिंतन का निषेध करती है। उसका एक ही उद्देश्य है, सारी स्थितियों को यथावत बनाए रखना। इसलिए प्रत्येक दृष्टि संपन्न और क्रांतिकारी रचना को यथार्थ के ऊपर जमी हुई इन अनेक परतों को सबसे पहले तोड़ना होता है। आधुनिक हिंदी साहित्य के ऐसे विद्रोही और तेजस्वी रचनाकारों की परंपरा में निराला के साथ अज्ञेय का नाम आएगा। शिखर का विद्रोह वैयक्तिक स्तर पर जितना उत्कट है, जीवन के बाह्य क्षेत्रों में उतना ही प्रखर भी है। अपने सारे भारोपीय वातावरण के बीच शिखर का केंद्रीय व्यक्तित्व राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय बिना किसी अतिरंजना के अपने मूल निर्मल रूप में। इसीलिए उसमें जाति संस्कारों का हिंदू सभ्यता के श्रेष्ठतम उपकरणों का कुशल मिश्रण है। शिखर का व्यक्तित्व इस बात का पुष्ट प्रमाण है कि राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता परस्पर विरोधी तत्व नहीं है। राष्ट्रीयता के आधार के बिना अंतर्राष्ट्रीयता का विकास संभव नहीं। यूँ थोथी अंतर्राष्ट्रीयता, या कहना चाहिए अंतरनागरिकता के पुरस्कर्ता आज इसके विरुद्ध तर्क देते हैं। इस विशिष्ट संदर्भ में स्वातंत्र पूर्व युग की तुलना में स्वातंत्र्योत्तर युग में शिखर के चरित्र की संगति कम नहीं होती, बढ़ ही जाती है। शिखर को देखकर यह संभव लगता है कि राष्ट्रीय शब्द का सहज और निर्मल भाव से प्रयोग किया जाए तो समकालीन भारतीय जीवन की एक मौलिक आवश्यकता है। शिखर वस्तुतः आधुनिक भारतीय व्यक्तित्व का एक मूल रूप है। जिन दिनों शिखर लिखा गया और प्रकाशित हुआ, राष्ट्रीयता के दो रूप हमारे सामने थे। यूरोप में राष्ट्रीयता उग्र रूप फासिज्म नाजीज्म अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच रहा था। सारा सभ्य संसार इस उन्माद को लेकर त्रस्त था। दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था, उसके पीछे गांधी के सर्वोदयी और नेहरू के समाजवादी चिंतन की पृष्ठभूमि थी। यूँ भी भारत की मानवतावादी संस्कृति में धार्मिक या जातीय उन्माद कभी पनप नहीं सका। हिंदू धर्म और सभ्यता अपने चिंतन तथा व्यवहार दोनों में आक्रामक नहीं हुए, फलतः भारतीय राष्ट्रीयता का रूप सृजनात्मकता रहा है, घृणा और ध्वंसपरक नहीं। स्वाधीनता संग्राम में आ जाने पर शिखर के मन में कई मौलिक प्रश्न उठते हैं। हिंसा और युद्ध को लेकर, राष्ट्रीयता और मानवता को लेकर, जेल जीवन के अपने एक शुरू के मित्र विद्याभूषण से इस प्रसंग में गहरी चर्चा होती है। सारे विवेचन में भारतीय भौतिक पृष्ठभूमि के अनुकूल शेखर का झुकाव राष्ट्रीयता की ओर है, पर हिंसा की ओर नहीं। राष्ट्रीयता की प्रबल शक्ति को अहिंसा की ओर मोड़ देना गांधी के व्यक्तित्व की एक बड़ी उपलब्धि थी। शेखर के ऊपर गांधी के विचार दर्शन का पर्याप्त प्रभाव है। वह आगे चलकर वह क्रांति की ओर आकृष्ट होता है। बाबा मदन सिंह से उसे दृष्टि मिलती है कि सब रक्तपात हिंसा नहीं है, राष्ट्रीय चरित्र के लिए क्रांति की आवश्यकता है। सिंह नटोटकामा, हमें चारित्र चाहिए तो हमें क्रांति चाहिए। नटोटकामा, शिखर के लिए अब क्रांति की सार्थकता दोहरे स्तर पर है। क्रांति वेदना के रूप में निजी चरित्र को निखारती है और बहिर्मुखी स्तर पर राष्ट्रीय चरित्र को ऊंचा उठाती है। शेखर के व्यक्तित्व में विद्रोह और क्रांति, राष्ट्रीयता और अहिंसा कृत्य एक स्तर पर संबद्ध और संगठित हो जाते हैं। अपने अंतर्मन में शेखर विद्रोही है और परिवेश के संबंध में राष्ट्रीय। इस तरह शेखर की टक्कर अपने चतुर्दिक समाज में बार बार होती है। इस संदर्भ में उसे बल मिलता है शशिकृष्ण और विश्वास से। इसीलिए शेखर मानता है कि उसका होना शशि के होने को लेकर है। विद्रोह और क्रांति, राष्ट्रीयता और अहिंसा, इनके संयोगों का मार्ग स्पष्ट ही खतरे का है। अपने मन के अंदर और बाहर स्वतंत्रता संग्राम के परिवेश में शेखर बराबर जोखिम से लगाव महसूस करता है। खतरनाक जीना है उसके लिए, सार्थक और रसमय जीना है। किसी ऐसी ही मनस्थिति में जवाहरलाल नेहरू ने खतरनाक ढंग से जीने की बात कही थी। पुत्र के भविष्य के लिए चिंतित अपने पिता तो शेखर कहता है, नटोटकामा, पर मैं तो सिक्योर होना नहीं चाहता। आप घर गृहस्थी निश्चित आमदनी और सिक्योरिटी की बात कहते हैं, मुझे यही जीवन के रोग लगते हैं। इन्हीं से तो मैं बचना चाहता हूँ। यह चैन की जिंदगी, यह आश्वासन का भाव, यह दिनों दिन जोखिम की अनुपस्थिति, यही तो घुन है जो जीवन की शक्ति को खा जाता है। जोखिम का यह वरण शेखर के टूटते हुए समाज की मांग है और उससे अधिक उसके अपने व्यक्तित्व की। इसका प्रमाण इससे बड़ा और क्या होगा कि शेखर की समूची परिकल्पना की फांसी के पहले की रात में हुई है। भाषा व्यक्तित्व का अभिन्नतम अंग है और इस बात को अज्ञेय के संदर्भ में बहुत सार्थक भाव से कहा जा सकता है। रचना के स्तर पर भाषा की जितनी चिंता अज्ञेय करते हैं, आधुनिक साहित्य में दूसरा लेखक नहीं करता। पर लेखक की व्यावहारिक दृष्टि में भी भाषा की चिंता प्राथमिकता पाती है। व्यक्तित्व यानी सृजनात्मक भारतीय व्यक्तित्व के संगठन के लिए चिंतित अज्ञेय अपने विचार सोचने के क्रम में भाषा का मौलिक स्तर पर महत्व देते हैं। भाषा उनके लिए अभिव्यक्ति का साधन भर नहीं है, वरन राष्ट्रीय जीवन का आधारभूत रूप है। इस प्रसंग में भी अपने निष्ठावान पर व्यावहारिक पिता से शेखर की बहस होती है। पिता चाहते हैं कि शेखर को यदि लेखक का जीवन ही स्वीकार करना है तो वह अंग्रेजी में लिखे। शेखर हिंदी में लिखने की बात कहता है। पिता पूछते हैं, सिंगल एडिटर कमा, पर पाठक किस श्रेणी के हैं? हमारे जीवन में हिंदी की हैसियत ही क्या है? शेखर ने कुछ अभिमान के साथ कहा। सिंगल एडिटर कमा, हिंदी जनभाषा है, करोड़ों व्यक्तियों के प्राण इसमें बोलते हैं। इनोटिक मामल, फिर यह सोचकर कि ऐसी दलील पिता को रुच सकती है, जानबूझ के शरारत की भावना से, यदि भी ऐसा नहीं था कि इस युक्ति में उसे विश्वास बिल्कुल न हो। इनोटिक मामल, और हमारी जाति की परंपरा बोलती है हमारा सारा अतीत इसमें बंधा हुआ है। इनोटिक मामल, होगा, पर जिससे आदमी का भविष्य न बने उसके अतीत को लेकर क्या करें, चाटें? मुझे तो भविष्य दिखता ही हिंदी में है। अगर हिंदी हम सबसे छूट गई तो भविष्य हुआ ना हुआ बराबर है। तुम्हें तो दिखेगा ही, हर बात में मेरा खंडन जो करना है। नटोटकामा, सारा प्रसंग जो अंतिम वाक्य में निष्पन्न होता है, दो पीढ़ियों के संबंधों के चित्रण में तो एकदम सहज और मनोवैज्ञानिक है ही। भाषा को लेकर उसमें व्यक्त विचार एक पक्षधर लेखक के न होकर विचारक रचनाकार के हैं और इसीलिए उनका महत्व हिंदी अंग्रेजी के ऊपरी विवाद को लेकर नहीं, वरन व्यक्तित्व के मौलिक संगठन को लेकर है। हिंदी को भविष्य से यानी कि शक्ति संभावना से संबद्ध करके देखना नौकरियों और किताबों के बिकने का प्रश्न न होकर सृजनात्मक क्षमता की परिपूर्णता का प्रश्न है। भाषा व्यक्तित्व का प्रतिबिंब न होकर उसका अभिन्नतम पक्ष है, इसलिए भाषा की चिंता व्यक्तित्व के संगठन की चिंता है। शिखर में निजी व्यक्तित्व और राष्ट्रीय जीवन को संपृक्त रूप में प्रस्तुत करने की रचनात्मक चेष्टा बराबर मिलती है और इसमें संदेह नहीं कि शिखर का निजी व्यक्तित्व जितना निजी है, राष्ट्रीय जीवन की चिंतना उतनी ही व्यापक है। राष्ट्रीय जीवन को अधिकाधिक उन्मुक्त, समतल और सृजनात्मक बनाने की बुनियादी चिंता शिखर के व्यक्तित्व में गहरे स्तर पर है। कांग्रेस नगर में वॉलंटियर संगठन में काम करने से लेकर सशक्त क्रांति में हाथ बटाने तक यही मूल वृत्ति इसके चरित्र में प्रतिफलित होती दिखाई देती है। पर जैसे घड़ी उसकी राष्ट्रीयता की अनुभूति है, बहिर्मुखी जीवन में उसकी वैसी व्यापक अभिव्यक्ति नहीं होती। शेखर के व्यक्तित्व में संगति की कमी का यह दूसरा पक्ष है। घोर जाड़े की बूंदाबांदी में रात को अकेले स्वयंसेवक के रूप में पहरा देते समय शेखर मुक्ति स्वराज स्वतंत्रता के बारे में सोचता है। वह यह भी सोचता है कि राष्ट्रीय जीवन का शक्ति स्रोत जनता है और नेता तथा जनता के बीच वैसा गहरा संबंध नहीं है जैसा कि गतिशील संचरण और मुक्ति के स्वप्न को साकार करने के लिए आवश्यक होता है। वारंटियर संगठन में भी ऊंच नीच का भेदभाव और अफसरशाही देखकर शेखर निराश होता है। रात के अकेलेपन में तरह तरह के विचार उसके मन में आते हैं। इनोटनामा रोज सुनने में आता है कि नेता नहीं है, ऐसे नेताओं के बोझ से तो समाज कुचला ही जाएगा, उठेगा कैसे? जो ऊपर से लादा जाएगा वह भार ही होगा, भार भाग कैसे होगा? भार उठाने की सामर्थ्य तो उसमें होती है जो नीचे से उठेगा। विघ्नों, बंधनों, भारों, श्रृंखलाओं की उपेक्षा करता हुआ मुक्ति, स्वराज, स्वतंत्रता कितने सुंदर शब्द, किंतु कहाँ हैं उनके पनपने के लिए खंडित और खाद युक्त मिट्टी, जनता? कहाँ है वह मिट्टी में ही रासायनिक क्रियाओं से बनी हुई खाद, जनता का अपना जननायक? हाँ, नेतागण जनता को खोजते हैं, किंतु यह जनता का दोष है कि वे नेता उसमें से उत्पन्न नहीं हुए हैं। नेटवर्क कामल राष्ट्रीय जीवन का वैषम्य तथा नेता और जनता का अलगाव द्रुत संचरण को संभव नहीं होने देता। शेखर के मन की यह चिंता कितनी सही है। इसीलिए फिर वह क्रमशः तोड़ने के मार्ग की ओर उन्मुख होता है। बाबा मदन सिंह का सूत्र उसी समझ में आता है कि तोड़ना ही धर्म बनता है तो अपने आप है। और स्वभाव से विद्रोही शेखर राष्ट्रीय संग्राम के अपेक्षा एकाकी रूप क्रांति के मार्ग का वर्णन करता है, उसने लेखन में भी और जीवन में भी। शेखर अपने जिन कई गुणों की वजह से समकालीन हिंदी साहित्य पर छा गया और उत्तरोत्तर अपना प्रभाव गहरा करता गया, उनमें इस उपन्यास का नया रचना संगठन एक मुख्य तत्व है। घटना, कथानक और चरित्र से आगे बढ़कर यह प्रधानतः संवेदन को अंकित करता है। स्थूल विवरण और इतिवृत्त पर बल न देने के कारण उपन्यासकार यह संभव पाता है कि वह मानव व्यक्तित्व को उसकी समग्रता में देखे और उसकी संगति समझ सके। उपन्यास में अनेक स्थल इस बात के उदाहरण है कि लेखक ने सामान्यतः प्रचलित वर्णनों के देने का लोप संवरण किया है। मृत्यु के पूर्व शशि की लंबी बीमारी का प्रसंग निहायत हल्के रंगों में बड़े सुकुमार भाव से अपूर्व भाषिक संयम के साथ अंकित हुआ है। बताओ शशि, क्यों होता है, क्या होता है? तब शशि हाथ उठाकर उसके बाल पकड़कर उसका सिर अपनी ओर खींच लेती है और कहती है, सुख शेखर सुख। और इसके बाद संक्षिप्त से अनुच्छेद में समय का एक लंबा और भावपूर्ण प्रवाह अंतर्मन और बाह्य परिवेश की अनेक प्रतिक्रियाओं और विस्तार के साथ अनायास उभार आता है। शेखर में शब्दों को लेकर अग्रे की मितव्ययिता इस बात का प्रमाण है कि अपनी पहली उपन्यास रचना में ही लेखक भाषा के गहरे प्रभाव को समझने लगा है। आरंभिक कविताओं का ढीलापन समाप्त होकर शिखर में भाषा को लेकर एक आंतरिक अनुशासन विकसित होता है और भाषा के क्षेत्र में मितव्ययिता और मितकथन के बीच अंतर है, इस प्रसंग में समझा जाना चाहिए। मितव्ययिता इस पर निर्भर है कि लेखक किसी एक संदर्भ में कितने कम शब्दों का व्यवहार करता है। मितकथन शब्दों के हल्के सांकेतिक प्रयोग की कला है, शब्दों की संख्या का वहाँ उतना बुनियादी महत्व नहीं है। मितव्ययिता तो सामान्यतः श्रेष्ठ कला का एक मौलिक गुण है। रचना संगठन में मितकथन हर हाल के साहित्य और कलाओं की विशेषता है, उसका प्रयोग अज्ञे के उत्तरकालीन साहित्य में देखा जा सकता है। स्थूल यथार्थवादी इतिवृत्तात्मक वर्णन से बचने के कारण अज्ञे के उपन्यासों की समीक्षा को प्रचलित शब्दावली में मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहा जाता है। यह बिल्ला स्पष्ट ही भोंडा है। अगर इसका कोई सही अर्थ है तो यही कि लेखक की कथाकृतियों में स्थूल यथार्थ की जगह यथार्थ के सूक्ष्म, जटिल और परस्पर गुथे हुए पक्षों को अंकित करने की कोशिश हुई है। यह नहीं कि उपन्यास में मनोवैज्ञानिक समस्याओं या कुंठाओं का चित्रण किया गया है। अतः प्रेमचंद के बाद जैनेन्द्र और अज्ञेय में जो गुणात्मक परिवर्तन आया है वह प्रधानतः भाषक प्रयोग को लेकर है, जिसकी वजह से वे यथार्थ का अधिक सूक्ष्म और संपृक्त अंकन कर पाते हैं। साधारणतः इस सूक्ष्म अंकन को ही मनोविज्ञान का पर्याय मान लिया जाता है। शेखर के विधान में आत्मकथात्मक शैली के प्रयोग के कारण लेखक को यह सुविधा रही है कि वह कथा के केंद्रीय चरित्र को उसके सारे संघर्षों, घातों, प्रतिघातों और संकल्पों विकल्पों के बीच ठीक ठाक देख पाया है। घटना और चरित्र की बजाय उनके संघात और संवेदन को इस शैली के कारण अधिक दक्ष ढंग से अंकित किया जा सका है। स्थूल यथार्थवादी वर्णन विवरण और इतिवृत्त को भी महत्व देने वाले क्लासिकल ढंग के उपन्यासों में अन्य पुरुष शैली अधिक उपयुक्त थी। आधुनिक उपन्यास इस ऊपर के घटाटोप को फाड़कर यथार्थ से सीधे सामना करना चाहता है। स्वभावतः उत्तम पुरुष शैली उसके लिए कुछ अधिक सुविधाजनक हो सकती है। जहाँ तक इस खतरे की बात है कि आत्मकथात्मक शैली में लेखक का आत्मघटित अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, जैसा कि लेखक ने उपन्यास की भूमिका में संकेत किया है, तो यह खतरा तो सभी शैलियों में वर्तमान है। मुख्य बात है कि रचनाकार अपनी अनुभूति को अनुभव मात्र को नहीं कहाँ तक खरे और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत कर सका है। अनुभूति का कच्चापन उत्तम पुरुष शैली में भी उतना ही संभव है जितना कि अन्य पुरुष शैली में। हाँ, इन शैलियों के चुनाव में वर्णन के प्रकार की दृष्टि से कुछ सुविधा हो सकती है। इस तरह यह प्रश्न ही गलत हो जाता है कि शेखर एक जीवनी में नाम भ्रम की संभावना मानते हुए लेखक के आत्मघटित का अंश कितना है। मूल प्रश्न यह है कि जीवन के जिन विभिन्न अनुभव क्षेत्रों को लेखक ने उपन्यास में लिया है, उनकी अनुभूति कितने प्रामाणिक और विश्वसनीय ढंग से अंकित हुई है। फिर चाहे शैली उत्तम पुरुष हो और शीर्षक में जीवनी शब्द आया, फिर इससे भी ऊपर यह कि इन अनुभूतियों के बीच से लेखक की रचना दृष्टि का क्या रूप उभरा है। अनुभूतियों के विस्तार और रचना दृष्टि की आंतरिक संगति ही उपन्यास के रचना संगठन को जांचने की कसौटी है, कृति की निष्पत्ति को परखने का मानदंड है। यहाँ हम अनुभव करते हैं कि अपने उपन्यास विधान में शेखर एक जीवनी प्रधानतः भाषिक सृजनात्मकता के कारण अनुभूति चित्रण में कहीं कतराता नहीं, न कहीं ओछा पड़ता है। चित्रण कहीं कहीं भाव के आराग प्रधान हो जाए वह दूसरी बात है। घोषित रूप में लेखक के अपने निजी अनुभव के लिए हुए बाल्य जीवन के चित्रों से लेकर, जिनमें से अनेक शेखर की नई और विशिष्ट भाव संपदा को समृद्ध करते हैं और अपने अनुभव क्षेत्र में अप्रतिम है। किशोर जीवन का सम्मोहन, यौवन में क्रांति, चुनौती की ओर उसका वर्ण और इस समूची अवधि में व्यक्तित्व को अधिकाधिक संगठित करने का प्रयास, यह सब ऐसे सजे ढंग से अंकित हुआ है कि शेखर लेखक के शब्दों में सिंगल इन टोटकामा एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज होने के बावजूद लेखक का निजी जीवन नहीं रह गया है। शेखर एक विशिष्ट वर्ग में बहुतों के अंदर वैसे ही है जैसे कोलरिज ने कहा था सिंगल इन टोटकामा, यदि मुझे कहना दिया जाए तो कहूँगा कि खुद मेरे अंदर हैमलेट की गंध है। भूमिका में लेखक ने कहा, शिखर में मेरापन इससे कुछ अधिक है, इलियट का आदर्श जिसकी मानता मैं मानता हूँ मुझसे नहीं निभ सका है। यह रचनाकार का विनय भी हो सकता है और सचेतन भाव भी, पर यह तो स्पष्ट है कि इस प्रसंग में लेखक का वक्तव्य कुछ खास महत्व तो नहीं रखता। शिखर में आगे किस सीमा तक अनधिकार रूप में है, इसका सही निर्णय उपन्यास का पाठक ही कर सकता है। उसके सामने तब तक एक ही कसौटी होगी कि उपन्यास में अंकित जीवन कहाँ तक विश्वसनीय है और कि वह स्वयं व्यापक मानव जीवन को समझने में कहाँ तक सहायता देता है। और अधिकतर पाठकों तथा भावुकों का यही उत्तर होगा, जैसा कि पिछले 25 वर्षों का अनुभव बताता है कि शेखर के अध्ययन में हमारी समृद्धि का अनुभव किया है।